ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। आज फूलपाती यानी बेलतोड़ी के अवसर पर सैनिक मंच टूडी खेल में आयोजित फूलपाती बढ़ाई कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हुई शरीक। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च का किया सीमा निर्धारण। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंतर्गत 32 दलों ने आयोग में की संशोधित बंद सूची पेश। और इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 125 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि अंतर्गत सप्तमी के अवसर पर आज फूलपाती यानी बेलतोड़ी मनाई गई। इस अवसर पर नेपाली सेना ने आज सैनिक मंच टूडी खेल में फूलों की वर्षा की। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अंतर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन फूलपाती मनाई जाती है, जिसे तराई क्षेत्र में बेलतोड़ी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन घर घर में शुभ साइत के प्रतीक के रूप में फूल, बेलपत्र, बेल आदि लाए जाते हैं। गोरखा दरबार से लाए गए फूल आदि को हनुमान ढोका के दसे घर में लाने से पहले नेपाली सेना ने सैन्य परंपरा के अनुसार हर्ष बढ़ाई की। समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पून, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा, विभिन्न संवैधानिक निकायों के प्रमुखों और अधिकारियों, मंत्रियों और उच्च सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति थी। नेपाली सेना हर साल फूलपाती के अवसर पर सैनिक मंच टूडी खेल में एक विशेष समारोह आयोजित करके फूलपाती मनाती है। नवरात्रि के सातवें दिन आज देवी कालरात्रि की विशेष पूजा की जाती है। दुर्गा पक्ष के 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने की शास्त्रीय परंपरा है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नौवें दिन सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा की जाती है। इस अवसर पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। काठमांडू घाटी से लगभग 17 लाख लोग आश्विन महीने के शुरू से लेकर आज फूलपाती तक दशहरा मनाने के लिए अपने घरों को जा चुके हैं। पिछले 2 सालों में कोविड के कारण काठमांडू घाटी से दशहरा मनाने के लिए बाहर जाने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन इस साल लगभग पिछले साल की तुलना में दुगने लोग अपने घरों को गए हैं। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ने कहा कि नेपाल के त्यौहार व्यक्तियों, परिवारों और समाज को एक साथ लाकर राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और रिश्तों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दशहरा, दीपावली, छठ लगायत राष्ट्रीय त्यौहारों और नेपाल संबत 1143 के अवसर पर शुभकामना देते हुए सभामुख सापकोटा ने कहा कि हमारी संस्कृति, परम्परा और त्यौहार मौलिकता और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने संदेश में उन्होंने डेंगू के संक्रमण के खतरे के प्रति जागरूक रहते हुए त्यौहार मनाने की सभी से विशेष अपील की। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयरहित वातावरण में आगामी चुनाव को संपन्न करने का भी सभी से आग्रह किया। इसी तरह राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा और नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने भी त्यौहारों की शुभकामना दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव के लिए समानुपातिक प्रणाली अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पेश की गई बंद सूची को 32 दलों ने पुनः संशोधित करके भेजा है। बता दें कि आयोग ने आश्विन 4 गते से 9 गते तक सूची पेश कर चुके राजनीतिक दलों को बंद सूची प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर संशोधित सूची भेजने का आग्रह किया था। आयोग के सुझाव के मुताबिक राजनीतिक दलों ने आश्विन 10 गते से आज 16 गते तक परिमार्जित सूची पेश की है। आयोग के सचिव गोकर्ण मणि दुवाड़ी ने बताया कि संशोधन के लिए पत्र भेजने की तिथि से 7 दिन के भीतर संशोधित सूची पेश करने का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। आज आयोग ने मौजूदा कानून के अनुसार मतदाताओं की संख्या के लिए 60%, मतदान केंद्रों की संख्या के लिए 20% और निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20% खर्च की सीमा का निर्धारण किया है। बता दें कि खर्च की सीमा तय करने से पूर्व आयोग ने दलों के साथ परामर्श किया, जिस दौरान एक ही प्रकार के खर्च की सीमा निर्धारण न करने के लिए आयोग को दिए गए सुझावों के अनुसार खर्चों में बदलाव करने का निर्णय किया गया है। काठमांडू महानगरपालिका ने उपलब्ध स्रोत साधनों से कूड़े कचरे का वर्गीकरण करने की बात कही थी, लेकिन नगरवासियों के असहयोग के कारण अब तक यह संभव नहीं हो पाया है। बता दें कि कचरा व्यवस्थापन को प्रभावकारी बनाने के लिए काठमांडू महानगरपालिका ने बीते श्रावण 1 गते से ही सड़ने और न सड़ने वाले कचरे का वर्गीकरण करने का नगरवासियों से सार्वजनिक सूचना के जरिए आग्रह किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया में एक फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा और भगदड़ में कम से कम 125 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इसे दुनिया में हुए अब तक के सबसे बड़े स्टेडियम हादसों में से एक बताया जा रहा है। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने पहले मरने वालों की संख्या 174 बताई थी, लेकिन बाद में ये जानकारी दी गई कि 125 लोगों की मौत हुई है। फुटबॉल मैच के बाद ये हिंसा तब भड़की जब मुकाबला हारने वाली टीम के प्रशंसक भड़क उठे और मैदान पर आ गए। मैदान से उन्हें हटाने के लिए पुलिसकर्मियों ने ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाने के बाद स्टेडियम में भगदड़ मच गई। ईस्ट जावा प्रांत में अरेमा एफसी और फरसेबाया सुरवाया के बीच मैच चल रहा था। अरेमा एफसी को 2-3 से हारता देख उसके प्रशंसक मैदान में घुसने लगे। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत के पुलिस प्रमुख निको अफिंटा ने बताया कि अपनी टीम को मैच हारता देख कुछ लोग फुटबॉल पिच की ओर भागे और उन्हें रोकने के प्रयास के दौरान हालात बेकाबू हुए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में मारपीट और अफरातफरी हुई। 34 लोगों की मौत स्टेडियम में हुई है, जबकि बाकी लोगों की मौत अस्पताल में हुई। मरने वालों में से 2 पुलिसकर्मी भी शामिल है। टर्की के रक्षा मंत्री हुसुली अकारी ने बताया है कि उत्तरी इराक में किए गए हवाई हमले में प्रतिबंधित संगठन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 23 चरमपंथी मारे गए हैं। यह हमला उत्तरी इराक में 140 किलोमीटर भीतर घुसकर असोस इलाके में किया गया है। टर्की अक्सर सीमा पार करके अपने पड़ोसी देश इराक में सशस्त्र ड्रोनों से हवाई हमलों को अंजाम देता रहा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के चरमपंथियों के प्रति उसका रुख लगातार आक्रामक रहा है। गुरुवार को रक्षा मंत्री हुलूसी अकारी ने बताया था कि सेना ने एक सप्ताह के भीतर उसी असोस इलाके में 16 टारगेट पर हवाई हमले किए थे। पीपीके लड़ाके 1984 से टर्की के खिलाफ चरमपंथी अभियान चला रहे हैं। इस अभियान में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। टर्की, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन इस संगठन को चरमपंथी संगठन मानता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज फूलपाती यानी बेल तोड़ी के अवसर पर सैनिक मंच टूडी खेल में आयोजित फूलपाती बड़ाई कार्यक्रम में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हुई शरीक। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च का किया सीमा निर्धारण। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंतर्गत 32 दलों ने आयोग में की संशोधित बंद सूची पेश और इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 125 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।